एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे प्राचीन यूनानी विचारक के विचारों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने पश्चिमी दर्शन की, कह सकते हैं, नींव हिला दी थी। एक ऐसा नाम पार्मेनाइड्स, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सचमुच वैसी ही है।
बिल्कुल, पार्मेनाइड्स का दर्शन देखिए एक चुनौती है, एक तरह का बौद्धिक झटका।
हाँ,
उन्हें अक्सर तत्वमीमांसा का पिता, मतलब फादर ऑफ मेटाफिजिक्स कहते हैं। उन्होंने ना तर्क और बुद्धि को, जो हम रोज देखते सुनते हैं, उससे ऊपर रखा
अच्छा,
और सत्य जानने का एक, कह सकते हैं, बिल्कुल नया और काफी क्रांतिकारी रास्ता दिखाया।
तो चलिए फिर इस सफर पर निकलते हैं और एलिया शहर के इस अनोखे दार्शनिक के विचारों की परतें खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 2500 साल पहले के ये विचार आज भी हमें क्यों सोचने पर मजबूर करते हैं। पार्मेनाइड्स का दौर यानी करीब 515 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन यूनान में एक बड़ी बौद्धिक हलचल का समय था, है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, वो प्री सोक्रेटिक दर्शन का, मतलब एक तरह से स्वर्ण युग था।
अच्छा,
लोग पहली बार, आप देखिए, मिथकों और कहानियों से आगे बढ़कर तर्क और विवेक के आधार पर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे थे।
हाँ, मतलब तर्क महत्वपूर्ण हो रहा था।
बिल्कुल, एक तरफ हेराक्लिटस जैसे विचारक थे जो कह रहे थे कि सब कुछ बहता है, मतलब परिवर्तन ही एकमात्र सच है। दूसरी तरफ पाइथागोरस जैसे लोग थे जो गणित और संगीत में ब्रह्मांड के रहस्य खोज रहे थे।
और इसी माहौल में दक्षिणी इटली के यूनानी उपनिवेश एलिया शहर से पार्मेनाइड्स आते हैं।
जी,
ये वो दौर भी था जब फारसी साम्राज्य से युद्ध चल रहे थे और एथेंस जैसे शहरों में लोकतंत्र वो आकार ले रहा था। विचारों का एक दिलचस्प टकराव चल रहा होगा।
निश्चित रूप से, और कहा जाता है कि पार्मेनाइड्स पर ज़ेनोफोनीज का भी कुछ प्रभाव था, जिन्होंने देवताओं के इंसानी रूप की आलोचना की थी।
अच्छा,
तो पार्मेनाइड्स एकदम अकेले नहीं सोच रहे थे, वो अपने समय के सवालों से जूझ रहे थे, पर उनका जवाब एकदम मौलिक था और चौंकाने वाला भी।
उनके निजी जीवन के बारे में तो शायद ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसा कि उस दौर के कई विचारकों के साथ है।
हाँ, ये सही है, बहुत ज्यादा विवरण नहीं मिलते, पर इतना पता है कि वे एलिया के एक सम्मानित और शायद धनी परिवार से थे। प्लेटो के एक संवाद में जिक्र आता है कि वे शायद एथेंस भी गए थे और वहां उनकी मुलाकात एक बहुत युवा सुकरात से हुई थी।
अरे, ये तो वाकई रोचक है, कल्पना करना भी मुश्किल है।
हाँ बिल्कुल, और उन्होंने एलिया में ही एक दार्शनिक स्कूल भी शुरू किया था।
हाँ, इलियाटिक स्कूल।
जी, इलियाटिक स्कूल, और उनके सबसे मशहूर शिष्य थे ज़ीनो। हाँ, ज़ीनो ऑफ एलिया।
अच्छा, वही ज़ीनो जिनके विरोधाभास मशहूर है।
बिल्कुल, वो अपने गुरु के विचारों का बचाव करने के लिए ही जाने जाते हैं, जैसे वो एकिलिस और कछुआ वाली पहेली।
हाँ, सुना है।
इससे पता चलता है कि इस स्कूल में तर्क पर कितना जोर था।
अब आते हैं उनकी रचना पर, ऑन नेचर नाम की एक कविता। दुख की बात है कि पूरी नहीं बची है।
हाँ, केवल कुछ अंश ही बाकी है, लगभग 160 पंक्तियां, लेकिन ये अंश भी दर्शन के इतिहास में कह सकते हैं मील का पत्थर है। ये कविता एक रूपक यात्रा की तरह है, जिसमें एक देवी वो दार्शनिक को सत्य के मार्ग पर ले जाती हैं।
अच्छा, एक देवी।
ये दिलचस्प है। और देवी उन्हें क्या सिखाती हैं? क्या है वो सत्य का मार्ग?
देवी दो रास्ते बताती हैं। पहला, सत्य का मार्ग, या जिसे वो अलेथिया कहती हैं, ये रास्ता तर्क और बुद्धि का है।
ठीक है, इसमें देवी समझाती हैं कि वास्तविकता, जिसे पार्मेनाइड सत या जो है कहते हैं, वो असल में कैसी है।
और दूसरा रास्ता?
दूसरा रास्ता है आभास या राय का मार्ग, जिसे डॉक्सा कहा गया। ये हमारी इंद्रियों का रास्ता है, जो हमें बदलती हुई अनेक चीजों वाली दुनिया दिखाता है।
अच्छा,
जिसे देवी भ्रामक मानती हैं, शब्दों का भ्रामक क्रम कहती हैं उसे।
बाप रे, तो क्या था पार्मेनाइड्स का मूल तर्क जिसने सब कुछ बदल दिया? वो सत या जो है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा?
यहीं पार्मेनाइड्स वो क्रांतिकारी बात कहते हैं जो हिला कर रख देती है। देखिए, उनका केंद्रीय विचार एक बहुत ही सरल दिखने वाले सूत्र पर टिका है।
क्या?
जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है।
वॉट इज इज, वॉट इज नॉट इज नॉट।
यानी अस्तित्व है और अनस्तित्व यानी कुछ नहीं होना संभव नहीं है।
ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, मतलब जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, इसमें इतनी क्रांतिकारी बात क्या?
लगता सीधा है, पर इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। देखिए, उनका तर्क कुछ ऐसे चलता है।
बताइए।
पहली बात, केवल वही चीज हो सकती है या सोची जा सकती है जो है,
मतलब जिसका अस्तित्व है।
ठीक। दूसरी बात, जो नहीं है यानी अनस्तित्व, नॉन बीइंग, वो न तो हो सकता है न ही उसके बारे में सोचा जा सकता है। आप कुछ नहीं के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए,
हाँ
तो भी आप उसे अपने विचार में कुछ बना देंगे, है ना?
हाँ ये बात तो है, सोचा तो वो कुछ बन गया।
बिल्कुल। अब सोचिए बदलाव के बारे में। अगर कोई चीज बदलती है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसी बन जाती है जो वो पहले नहीं थी, या उसमें से कुछ ऐसा गायब हो जाता है जो पहले था। लेकिन हमने अभी कहा कि जो नहीं है वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तर्क कहता है कि बदलाव असंभव है।
एक मिनट, मतलब बदलाव हो ही नहीं सकता
उनके तर्क के अनुसार? नहीं। और इसी तरह अनेकता, मतलब बहुत सारी चीजों का होना, वो भी संभव नहीं है।
पर क्यों, हमें तो इतनी सारी चीजें दिखती हैं।
क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें होंगी तो उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए उनके बीच में कुछ होना चाहिए, है ना?
हाँ, कोई खाली जगह या कुछ।
वो क्या होगा? वो केवल असत या अनस्तित्व ही हो सकता है, लेकिन अस्तित्व तो है ही नहीं।
अरे बाप रे,
इसलिए असलियत में सब कुछ एक ही है, अविभाज्य है, पूर्ण है।
मतलब बदलाव, अनेकता, जन्म मृत्यु, जो हम हर पल अनुभव करते हैं, पार्मेनाइट्स के हिसाब से वो सब एक एक भ्रम है, क्योंकि तर्क कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल। यही यही उनका सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद निष्कर्ष था।
ये तो मानना मुश्किल है।
हाँ, उन्होंने कहा कि अगर हमारी इंद्रियां हमें कुछ ऐसा दिखाती हैं जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो हमें तर्क पर विश्वास करना चाहिए, इंद्रियों पर नहीं।
अच्छा,
उन्होंने वास्तविकता, जो एक है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, और आभास यानी हमारी इंद्रियों की भ्रामक दुनिया के बीच एक गहरी खाई खोद दी।
ये तो उनके समकालीन हेराक्लिटस के सब कुछ बह रहा है वाले विचार से एकदम उल्टा है।
हाँ बिल्कुल।
एक कह रहा है सब बदल रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ बदल ही नहीं सकता। गजब का विरोधाभास।
हाँ, ये प्राचीन दर्शन की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, सत बीइंग बनाम बनना, बिकमिंग। और इस टकराव ने बाद के दार्शनिकों को बहुत गहरे तक प्रभावित किया, खासकर प्लेटो को।
अच्छा, प्लेटो ने इसका हल निकालने की कोशिश की थी अपने विचारों के सिद्धांत से, है ना, थियरी ऑफ फॉर्म्स जिसे कहते हैं।
काफी हद तक हाँ, प्लेटो ने माना कि हाँ, हमारी इंद्रियों की दुनिया तो बदलती रहती है जैसा हेराक्लिटस ने कहा, लेकिन एक और असली दुनिया है,
कौन सी?
विचारों या फॉर्म्स की दुनिया। जैसे सुंदरता का असली विचार, न्याय का असली विचार, ये दुनिया शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, एकदम सही है।
ओह, तो वो पार्मेनिडीज के साथ जैसी है?
हाँ, काफी करीब है। तो प्लेटो ने पार्मेनिडीज की चुनौती का जवाब देते हुए एक तरह से दोनों दुनियाओं को समेटने की कोशिश की, और ज़ेनो के विरोधाभास भी।
हाँ, ज़ेनो
वो भी इसी कोशिश का हिस्सा थे कि पार्मेनाइड्स की बातों को तार्किक रूप से सही साबित किया जाए, ये दिखाकर कि गति और अनेकता के हमारे सामान्य विचार कितनी उलझे हुए हैं।
तो पार्मेनाइट्स का असर सिर्फ प्लेटो तक ही सीमित नहीं रहा होगा, यकीनन आगे भी गया होगा।
बिल्कुल नहीं। अरस्तु, जो प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने पार्मेनाइट्स के निष्कर्षों को तो नहीं माना।
क्यों?
क्योंकि वे दुनिया के अनुभव को, जो हम देखते हैं, उसे नकारना नहीं चाहते थे। अरस्तु ने परिवर्तन को समझाने के लिए संभावना, पोटेंशियलिटी, और वास्तविकता, एक्चुअलिटी जैसी अवधारणाएं घड़ी।
अच्छा, जैसे?
जैसे बीज में पेड़ बनने की संभावना है, और जब वो पेड़ बन जाता है तो वो उसकी वास्तविकता है। इस तरह उन्होंने बदलाव को समझाने की कोशिश की, लेकिन अरस्तु ने भी पार्मेनाइट्स की तार्किक शक्ति का लोहा माना। वो जानते थे कि ये तर्क बहुत शक्तिशाली है।
और बाद के दर्शन पर, मध्य युग में या आधुनिक युग में,
उनका प्रभाव बहुत गहरा है। मध्य युग में ईश्वर की प्रकृति पर बहस करते हुए दार्शनिकों ने उनके सत के विचार को ध्यान में रखा। आधुनिक युग में डेकार्त से लेकर स्पिनोजा और हेगेल तक सब ने उन सवालों से जूझना जारी रखा जो पार्मेनाइड्स ने उठाए थे। विचार और वास्तविकता का क्या रिश्ता है? ज्ञान का स्रोत क्या है, तर्क या अनुभव?
हाँ, ये तो बड़े सवाल हैं।
पार्मेनाइड्स ने तर्कवाद, रैशनलिज्म की नींव रखी, ये मानना कि सच्चा ज्ञान हमें तर्क से ही मिल सकता है, इंद्रियों से नहीं।
लेकिन ये विचार हमारे रोजमर्रा के अनुभव से इसने अलग है, आलोचना तो जमकर हुई होगी।
हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी आलोचना तो अरिस्तु से ही आई, जैसा हमने बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा दर्शन जो हमारी आंखों देखी सच्चाई को ही नकार दे, वो कैसे सही हो सकता है।
सही बात है।
इसके अलावा पार्मेनाइड्स के बाद आने वाले कुछ दार्शनिकों, जिन्हें हम बहुलवादी और परमाणुवादी कहते हैं, उन्होंने एक रास्ता निकालने की कोशिश की।
उन्होंने क्या कहा, मतलब कैसे समझौता किया?
जैसे एम्पिडोक्लीज में कहा कि हाँ, मूल चीजें जैसे चार तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वो तो शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, जैसा पार्मेनाइड्स ने कहा।
ठीक है,
लेकिन ये तत्व आपस में मिलते और बिछुड़ते हैं, और इसी से हमें परिवर्तन और अनेकता दिखती है।
अच्छा, तो मूल चीज नहीं बदलती पर उनका मिश्रण बदलता है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। इसी तरह डेमोक्रेटस और उनके अनुयायियों ने कहा कि दुनिया अनगिनत छोटे छोटे अविभाज्य परमाणुओं, एटम्स और खाली जगह, वॉइड से बनी है।
परमाणुवाद।
जी, ये परमाणु खुद तो नहीं बदलते, लेकिन खाली जगह में घूमते और जुड़ते हैं, जिससे दुनिया की सारी विविधता और बदलाव पैदा होते हैं। ये एक तरह से पार्मेनाइड्स की चुनौती और हमारे अनुभव के बीच समझौता करने की कोशिश थी।
ये दिलचस्प है। और क्या आज भी उनके विचारों की व्याख्या पर बहस होती है कि उनका असल मतलब क्या था?
हाँ बिल्कुल, विद्वान आज भी इस पर बहस करते हैं कि पार्मेनाइड्स का ठीक ठीक मतलब क्या था। क्या वे सचमुच कह रहे थे कि ये भौतिक दुनिया है ही नहीं, या वे सिर्फ ये कह रहे थे कि इस दुनिया को समझने के हमारे तरीके, जैसे भाषा, विचार, वो भ्रम पैदा करते हैं। ये सवाल आज भी जिंदा है। और एक और मुश्किल खड़ी होती है, अगर असलियत सच में एक और स्थिर है, तो हम ये जो बात कर रहे हैं अनेकता और बदलाव की, ये सार्थक कैसे है?
हाँ, ये भी एक पहेली है। चलिए कुछ और रोचक बातें जानते हैं पार्मेनाइड्स के बारे में। एक तो ये कि उन्होंने दर्शन को कविता में लिखा, ये तो अनोखी बात है।
हाँ, और वो भी महाकाव्य वाली छंद में, मतलब डैक्टिलिक हेक्सामीटर, जिसमें होमर ने इलियड और ओडिसी लिखी थी।
अरे वाह,
मानो दार्शनिक खोज भी कोई वीरता भरी यात्रा हो। उनकी कविता में जो देवी ज्ञान देती हैं, वो भी पारंपरिक यूनानी देवताओं से अलग हैं।
कैसे?
उनका काम सिर्फ दार्शनिक सत्य बताना है, वो इंसानी झगड़ों में या भावनाओं में नहीं पड़ती।
हाँ,
एकदम तर्क पर आधारित।
और वो सुकरात से मिलने वाला किस्सा आपने बताया था।
हाँ, प्लेटो के संवाद के अनुसार जब बूढ़े पार्मेनिडाइट्स एथेंस गए, तो उन्होंने युवा सुकरात को तर्क में हरा दिया था।
सच में सुकरात को?
हाँ, ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि प्लेटो आम तौर पर सुकरात को ही बहस में जीतते हुए दिखाते हैं। ये शायद पार्मेनाइड्स के तार्किक कौशल के प्रति प्लेटो का गहरा सम्मान दिखाता है।
कमाल है।
और वे सिर्फ विचारक ही नहीं थे, अपने शहर एलिया के सम्मानित नागरिक और कानून बनाने वाले भी थे, मतलब समाज से जुड़े हुए थे।
तो कुल मिलाकर पार्मेनिडाइस ने हमें तर्क की ताकत दिखाई, लेकिन साथ ही हमें हमारे अनुभव और तर्क के बीच के गहरे तनाव से भी रूबरू कराया।
बिल्कुल, उन्होंने वो मौलिक सवाल खड़े किए जिनसे दर्शन आज भी जूझ रहा है। अस्तित्व का क्या मतलब है, क्या बदलाव असली है, हम सच को कैसे जान सकते हैं, क्या हमारी इंद्रियां भरोसेमंद हैं? पार्मेनाइड्स हमें अपनी सबसे बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जिसे हम वास्तविकता समझते हैं, हो सकता है वो तर्क की कसौटी पर खरी न उतरे।
ये शायद हमारी समझ अधूरी है।
हाँ, उनका दर्शन हमें अपनी समझ की सीमाओं को टटोलने और शायद दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की चुनौती देता है।
ये सोचना कि शायद हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे रही हैं और असली सच कहीं और है, तर्क में छिपा है, ये वाकई एक गहरा विचार है जिसे पार्मेनाइड्स ने हमारे सामने रखा, सोचने पर मजबूर करने वाला।
निश्चित रूप से।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कतर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।